ख्रीस्ट में बढ़ते जाना। जिस परिवर्तन के द्वारा हृदय इतना विशुद्ध और निर्मल हो जाता है कि हम ईश्वर के पुत्र बन जाते हैं, उसी परिवर्तन को बाइबल में जन्म कहा गया है। फिर इस अवस्था की उपमा किसान द्वारा बोए गए बीज के अंकुरित होने से दी गई है। उसी प्रकार जो लोग तुरंत ख्रीस्ट की शरण में नए नए आते हैं, वे नए जन्मे बच्चों की नाई हैं और उन्हें यीशु में निवास कर पूरे मनुष्य की कद का बढ़ते जाना पड़ता है। 1 पत्रस 2:2, इफिसियों 4:15। अथवा खेत ने बोए गए अच्छे बीज की तरह उन्हें अंकुरित, पल्लवित, कुसुमित और फिर फलित होना पड़ेगा। यशाया ने कहा है, ये धर्म के भक्ति वृक्ष और यहोवा के लगाए हुए कहलाएं कि वो शोभायमान ठहरे। यशाया 61:3। इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे वास्तविक और प्रकृत जीवन से उदाहरण एकत्र किए जाते हैं, ताकि हम आत्मिक जीवन के कौतुक और रहस्यपूर्ण सत्य को पूरी तरह समझ सकें। मनुष्य की सारी बुद्धि और कौशल संसार की छोटी से छोटी चीज में जीवन डाल नहीं सकता। ईश्वर ने जीवन शक्ति पौधों और मनुष्यों में दी है, उसी के बल पर वे जीवित रह सकते हैं। उसी प्रकार आत्मिक जीवन भी मनुष्य के हृदय में ईश्वर द्वारा ही प्राप्त हो सकता है। जब तक मनुष्य नए सिरे से न जन्मे, तब तक वो उस जीवन को प्राप्त नहीं कर सकता जिसे ख्रीस्ट देने आए थे। जो बात जीवन प्राप्ति के विषय सच है, वही वृद्धि के बारे में सत्य है। ईश्वर ही कलियों को विकसित करता है, ईश्वर ही फूलों को फलों से भरता है। उसी की शक्ति के कारण बीज विकसित होता है, पहले अंकुर, तब बाल और बालों में तैयार दाना। मरकुस 4:28। होशे नबी इसराइल के विषय कहते हैं कि वो सोसन की नाई फुले फलेगा, वे अन्न की नाई बढ़ेंगे और दाखलता की नाई फुले फलेंगे। होशे 14:5-7। यीशु हमें आदेश देते हैं कि सोसनों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं। लूका 12:27। पौधे, फूल और वृक्ष अपनी शक्ति, सामर्थ्य और चेष्टा के बल पर बढ़ते नहीं, किंतु ईश्वर की जीवन शक्ति पाकर ही वृद्धि पाते हैं। बच्चा चाहे स्वयं कितना भी उद्योग, चेष्टा और फिक क्यों न करे, अपनी लंबाई चौड़ाई में बाल भर भी वृद्धि नहीं ला सकता। आप भी अपनी चिंताओं और चेष्टाओं के द्वारा अपने में आत्मिक वृद्धि नहीं ला सकते। पौधे और बच्चे अपनी परिस्थिति से आवश्यक पदार्थों, वायु, सूर्य किरण और भोजन को खींचकर अपने जीवन में मिलाते हैं, तभी बढ़ते हैं। ये वस्तुएं उनके जीवन और वृद्धि विकास के लिए ईश्वर के उपहार हैं। प्रकृति के पशु और पौधों के लिए जो काम ये वस्तुएं करती हैं, वही काम ख्रीस्ट भी अपने विश्वासियों के प्रति करते हैं। वे उनके लिए सदा का उजियाला है तथा सूर्य और ढाल है। यशाया 60:12, भजन संहिता 84:11। वे इसराइल के लिए ओस के समान होंगे, वे घास की खूंटी पर बरसाने हारे मह के समान आ पड़ेंगे। होशे 14:5, भजन संहिता 72:6। वे जीवित जल हैं, परमेश्वर की रोटी हैं, जो स्वर्ग से उतरकर जगत को जीवन देती है। यूहन्ना 6:33। अपने प्रिय पुत्र के अनुपम उपहार के द्वारा ईश्वर ने समस्त जगत में अनुग्रह और सुषमा का वितान तान दिया है। ईश्वर का ये अनुग्रह और सुषमा उसी प्रकार सत्य है जिस प्रकार पृथ्वी मंडल में व्याप्त वायु। जो कोई भी इस अनुग्रह और सुषमा का उपयोग करेगा, वो जीवन प्राप्त करेगा तथा यीशु में निवास कर पूरे पुरुष और स्त्री की तरह विकास पाएगा। जिस तरह फूल सूर्य की ओर घूम घूम कर उसकी जीवनदायिनी किरणों को ग्रहण करता है और अपने सौंदर्य और सुडौलता में पूर्णता लाता है, उसी प्रकार हमें भी शुद्ध और पवित्र सूर्य यीशु की तरफ घूम घूम कर स्वर्गीय किरणों का ग्रहण और यीशु के अनुरूप अपने चरित्र को विकसित करना चाहिए। इसी बात की शिक्षा यीशु ने ये कहकर दी है, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली दाखलता में यदि बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते। मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। यूहन्ना 15:4-5। पवित्र जीवन यापन के लिए आप ख्रीष्ट पर उसी प्रकार निर्भर करते हैं जिस पराक्र वृद्धि और फल के लिए डालियां अपने पौधों पर। उसके बिना आप में जीवन नहीं। आप में इतनी सामर्थ्य कहां कि आप परीक्षाओं का सामना कर सकें और पवित्रता तथा अनुग्रह में बढ़ सकें। उनमें निवास कर आप फल फूल सकते हैं। उनसे जीवन प्राप्त कर आप न तो सूखेंगे और न बिना फल के रहेंगे। आपकी अवस्था वैसी रहेगी जो अथाह जल से भरी नदियों के तीर पर रोपे हुए वृक्षों की रहती है। अनेक लोगों की ये धारणा है कि कर्तव्य का कुछ अंश स्वयं करना आवश्यक है। उन्होंने पापों की क्षमा प्राप्ति के लिए ख्रीष्ट पर भरोसा किया है, किंतु अब अपनी ही चेष्टाओं द्वारा वे पवित्र जीवन यापन करने के इच्छुक हैं, किंतु ऐसी सभी चेष्टाएं विफल होंगी। यीशु ने कहा है, मेरे बिना तुम कुछ भी नहीं कर सकते। हमारी अनुग्रह प्राप्ति की शक्ति में वृद्धि, हमारी उपयोगिता, सभी कुछ तो ख्रीष्ट में मिले रहने पर निर्भर करता है। उनके साथ प्रतिदिन प्रतिक्षण संबंध करने पर ही, उनमें वास करने पर ही हम अनुग्रह में बढ़ सकते हैं। वे केवल हमारे विश्वास के कर्ता ही नहीं, परंतु सिद्ध करने वाले भी हैं। ख्रीष्ट ही आदि, अंत और सदालु हैं। वे सदा, सर्वदा, सर्वत्र हैं, जीवन में व्याप्त हैं। हमारे जीवन के वे न केवल प्रारंभ में और अंत में रहेंगे, किंतु पग पग में भी। दाऊद ने कहा है, मैं यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख जानता आया हूं, वो मेरे दहिने रहता है, इसलिए मैं नहीं टलने का। भजन संहिता 16 आयत 8। अब आप पूछ सकते हैं कि यीशु में निवास मैं किस प्रकार करूंगा। इसका उत्तर यही है कि जिस प्रकार आपने प्रारंभ में यीशु को अपनाया, उसी प्रकार उनमें निवास भी कीजिए। जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके मान लिया है, वैसे ही उसी में चलो। धर्मी जन विश्वास से जीता रहेगा। कुलुसियों 2 आयत 6, इब्रानियों 10 आयत 38। आपने अपने आप को ईश्वर को सौंप दिया। आप पूर्णतः ईश्वर को अर्पित हुए, ताकि आप उनकी सेवा करें, उनकी आज्ञाओं का पालन करें। आपने ख्रीष्ट को अपना त्राता मान लिया। आप अपने पापों का प्रायश्चित भी स्वयं नहीं कर सकते हैं और अपने हृदय को परिवर्तित भी स्वयं नहीं कर सकते हैं। किंतु जब आपने अपने ईश्वर पर न्योछावर कर दिया, तो उसने ख्रीष्ट के नाम से आपके लिए ये सब किया। विश्वास के कारण आप यीशु के हो गए और विश्वास के बल पर ही आपको यीशु में वृद्धि पाना तथा विकसित होना है। ये आदान प्रदान हुआ। आपको अपने सर्वस्व का आदान करना होगा। हृदय, इच्छा, सेवा सभी समर्पित कर देनी होगी। उनकी सारी आज्ञाओं के पालन करने में अपने को लुटा देना होगा। उन्हें आपको ग्रहण करना होगा। ख्रीष्ट में सब आशीषों की भरपूरी है। वे ही आपके हृदय में विराजेंगे, आपको शक्ति देंगे, पवित्रता देंगे, अनंत सहायता प्रदान करेंगे और ईश्वर की आज्ञाओं के पालन के लिए सामर्थ्य देंगे। प्रातःकाल अपने को ईश्वर के लिए समर्पित कीजिए। यही समर्पण आपके लिए नित्य का सर्वप्रथम काम हो। आपकी प्रार्थना ऐसी हो, हे प्रभु, मुझे पूरी तरह तू ग्रहण कर ले और पूरी तरह अपना समझ। तेरे चरणों पर मैं अपनी सारी योजनाएं अर्पित कर दे रहा हूं। अपनी सेवा में आज मुझे लगा ले। मेरे अंतर में निवास कर और मेरे सारे कार्य तुझ में संपादित हो, ऐसी सामर्थ दे। ये आप नित्य कीजिए। प्रतिदिन प्रातःकाल अपने को ईश्वर अर्पित कीजिए। अपनी सारी योजनाएं उन पर समर्पित कीजिए, ताकि जैसा वे समझे, योजनाएं सफल हों अथवा असफल।
यीशु में समर्पित जीवन विश्राम का जीवन है। इस जीवन में भावों का उद्वेग नहीं, किंतु अनंत शांति, पूर्ण विश्राम है। आपकी आशा आप में नहीं, किंतु ख्रीष्ट में है। आपकी दुर्बलता उनकी शक्ति में मिल जाती है। आपका ज्ञान उनकी बुद्धि और कुशाग्रता से संबंधित होता है। आपकी अशक्तता उनकी महान शक्ति में जुट जाती है। अतएव आप अपने ऊपर भरोसा ना कीजिए, किंतु सर्वदा यीशु का स्मरण मनन कीजिए। मस्तिष्क को उनके प्रेम, सौंदर्य और चरित्र की पूर्णता का मनन करने दीजिए। यदि कोई भी वस्तु आत्मा की साधना के लिए चिंतन का विषय है, तो वो विषय यीशु का आत्मत्याग, यीशु की आत्मावज्ञा, यीशु की पवित्रता और विशुद्धता और यीशु का अद्वितीय प्रेम ही है।
उन्हें प्यार कर, उनका अनुकरण कर, उन पर पूर्णतः निर्भर कर आप अपने को उनके अनुरूप बना ले सकते हैं। यीशु ने कहा है, मुझ में बने रहो। इन शब्दों में विश्राम, शांति और विश्वास के भाव निहित हैं। वे फिर आमंत्रित कहते हैं, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मत्ती 11 आयत 28-26। स्तोत्रकर्ता के शब्दों में भी वही भाव छिपा है जब वो कहता है, यहोवा के सामने चुपचाप रह और धीरज से उसका आसरा रख। भजन संहिता 37 आयत 7। और यशाया यह निश्चयता देता है, चुपचाप रहने, भरोसा रखने से तुम्हारी वीरता ठहरेगी। यशाया 30 आयत 14। इस चुपचाप के मूल में अक्रियाशीलता या आलस्य नहीं है, क्योंकि मुक्तिदाता के निमंत्रण में विश्राम की प्रतिज्ञा और परिश्रम करने की आज्ञा दोनों मिली हुई हैं। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। मत्ती 11 आयत 26। जो हृदय यीशु में जितना अधिक विश्राम करता है, वो उतने ही आग्रह और उत्साह से उनके लिए परिश्रम करता है। जब मस्तिष्क स्वार्थ के विषय पर केंद्रित रहता है, तो वो यीशु के विमुख रहता है, कि मन मुक्तिदाता से विमुख रहे और आत्मा तथा परमात्मा का समागमन न हो सके। शैतान सदा चाहेगा कि आपका मन संसारी भोग विलासों में, जीवन के उधेड़बुन में, चिंताओं और पहेलियों में, दूसरे के अवगुणों में अथवा अपनी दुर्बलताओं और अवगुणों में उलझा रहे। शैतान की चपेट में न आइए। अक्सर सच्चे आत्मविवेकी एवं ईश्वरानुरागी लोगों को भी शैतान चक्र में डालकर स्वार्थ में प्रवृत्त करा देता है और उन्हें यीशु से पृथक कर अपने विजय की आशा करता है। हमें स्वार्थ को चिंतन का केंद्र न बनाना चाहिए और अपने उद्धार के विषय में संशय न करना चाहिए। इन सबों से आत्मा शक्ति के मूल स्रोत से हटकर दूसरी ओर जा लगती है। अपनी आत्मा को पूरी तरह ईश्वर के हाथों सौंप दीजिए और उन पर भरोसा कीजिए। सदा यीशु के बारे संभाषण कीजिए और उनका ही ध्यान लगाइए। अपने स्वार्थ को उन्हीं में तिरोहित कर दीजिए। सारे संशय, संदेह और भ्रम को दूर कर दीजिए। अपने भय को बहिष्कृत कीजिए। पावल के साथ साथ ये बातें बोलिए, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं और मैं जीता न रहा, पर मसीह मुझ में जीता है। और मैं शरीर में अब जो जीता हूं, तो उस विश्वास में जीता हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। गलातियों 2 आयत 20। ईश्वर में विश्राम कीजिए। वे इतने समर्थ हैं कि आपके द्वारा अर्पित सारी वस्तुओं को सुरक्षित रख सकेंगे। यदि आप अपने को उनके हाथों सौंप देते हैं, तो वे आपको विजयी से भी अधिक गौरवान्वित रूप में जीवन के पार लगा देंगे। जब यीशु ने मनुष्यत्व धारण किया, तो उन्होंने मनुष्यत्व को अपने से प्रेम की ऐसी जटिल बंधनों द्वारा बांध लिया कि वो किसी के तोड़े न टूटेगी। हां, यदि मनुष्य उसे तोड़ देना पसंद करे, तो वही तोड़ सकेगा। और शैतान सदा ऐसी मोहक और आत्मिक वस्तुएं हम लोगों को दिखलाएगा कि हम इस बंधन को तोड़ देने में प्रवृत्त हो जाएं। इसके तोड़ देने पर हम यीशु से अलग हट जाएंगे। यहीं पर हमें सतर्क रहना चाहिए कि हम किसी भी हालत में दूसरे स्वामी के अधिपत्य में न भूल पड़ें। हमें सदा ख्रीष्ट का ध्यान लगाना चाहिए। वही हमारी रक्षा कर सकेंगे। जब तक उनकी ओर ध्यानरत रहेंगे, हम सुरक्षित रहेंगे। किसकी सामर्थ जो उनके हाथों से हमें छीन कर ले जाए? उनके सतत ध्यान और साधना से उस प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, तेज पर तेज प्राप्त करते हुए उसी रूप में बदलते जाते हैं। 2 कुरिन्थियों 3 आयत 18। प्राचीन समय के शिष्यों ने अपने मुक्तिदाता के अनुरूप अपने को इसी विधि से बनाया था। जब इन लोगों ने यीशु की वाणी सुनी, तो इन्होंने यीशु की आवश्यकता अनुभव किया। इन्होंने उन्हें खोजा, उन्हें पाया और फिर उन्हीं का अनुसरण किया। ये लोग यीशु के साथ घर में खाना खाते वक्त, बात करते वक्त, मैदान में, सब समय सब जगह रहते थे। ये शिष्यों की तरह और अपने गुरु से पवित्र शिक्षाएं और उपदेश श्रवण करते थे। ये उन्हें अपना स्वामी समझते और दासों की तरह उनकी आज्ञाएं पालन करते थे। ये शिष्य हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य थे। याकूब 5 आयत 17। हम लोगों की तरह उन्हें भी पाप से दुर्घटतर्ष संग्राम करना पड़ा था।
पवित्र जीवन व्यतीत करने के लिए उन्हें भी हमारी ही तरह ईश्वर के अनुग्रह की आवश्यकता थी। यीशु का सबसे प्रिय शिष्य और यीशु की समता करने वालों में सबसे अग्रगण्य योहन ने भी स्वाभाविक रीति से मधुर प्रकृति नहीं पाई थी। वह न केवल आत्मप्रशंसी और सम्मान प्रेमी था, किंतु उग्र और क्रोधी भी था। परंतु जब उस ईश्वरीय विभूति यीशु की मधुर प्रकृति उसकी आंखों के सामने आई, तो उसने अपनी सारी दुर्बलताएं देख ली। तब कहीं वह विनम्र हुआ। बल और धैर्य, शक्ति और उदारता, सौम्य और सरलता के प्रकाश जो उसने ईश्वर पुत्र में देखे, तो उसकी आत्मा विस्मय और पुलक से भर गई। वह प्रेम विभोर हो उठा। प्रत्येक दिन वह ख्रीष्ट को और अधिक तीव्रता से आकृष्ट होता गया, और फिर थोड़े ही दिनों के बाद उसने अपने स्वयं को स्वामी के प्रेम में डूबा दिया। यीशु की कृपा के कारण उसकी उग्रता और दोष दब गए। ख्रीष्ट की धवल प्रतिभा ने उसे अभिनव स्पंदन से भर दिया। उसकी प्रकृति आमूल बदल गई। यह यीशु से एकतान होने का अनिवार्य फल है। जब जब यीशु हृदय में अधिष्ठित होते हैं, प्रकृति में आशातीत परिवर्तन हो जाता है। यीशु की विभूति, उनका प्रेम हृदय को कोमल बना देता है, आत्मा को विनम्र कर देता है, विचारों की पृष्ठभूमि को स्वर्गोमुख कर उन्नत और इच्छाओं को ईश्वरोमुख कर गौरवयुक्त कर देता है। जब यीशु ने स्वर्गारोहण किया, तो उनकी उपस्थिति का भाव उनके शिष्यों में रह ही गया था। यह उपस्थिति का भाव वैयक्तिक भाव था, और ममत्व तथा आलोक से पूर्ण सांत्वनाएं दी वही यीशु शांति के उपदेश देते ही देते उनसे छीन कर स्वर्ग को ले जाया गया। जब दूतों ने बादलों पर उनका स्वागत किया, तब उनकी वाणी गूंज उनके पास आती रही, देखो मैं जगत के अंत तक सब दिन तुम्हारे साथ हूं। मत्ती 28 आयत 20। उन्होंने मनुष्य के रूप में स्वर्गारोहण किया। शिष्यों ने यह जान लिया कि वे ईश्वर के सिंहासन के पास होंगे, फिर भी उनके परम मित्र और मुक्तिदाता रहेंगे। उनके अनुराग और सहानुभूति अडिग अक्षुण्ण रहेगी, और वे सदा शोकग्रस्त मानवता के प्रतीक रहेंगे। तब वे अपने अमूल्य रक्त कणों के गुण ईश्वर को दिखलाते होंगे, अपने कटे और लोहू से लथपथ हाथ और पांव दिखलाते होंगे, और कहते होंगे कि मानव कल्याण के लिए, उनकी मुक्ति के लिए इतनी कीमत चुकाई गई। ये शिष्यगण जानते थे कि उन्होंने स्वर्गारोहण केवल इसीलिए किया था कि शिष्यों के लिए स्थान सुरक्षित किया जाए। वे यह भी जानते थे कि यीशु फिर से आएंगे और उन्हें अपने साथ ले जाएंगे। स्वर्गारोहण के बाद जब उन्होंने आपस में भेंट की, तो यीशु के नाम पर वे अपनी प्रार्थनाएं ईश्वर के समक्ष करने को तैयार थे। गंभीर मुद्रा में वे प्रार्थना करने को झुक गए, इस निश्चयता को दोहराते हुए कि यदि पिता से कुछ मांगोगे तो वो मेरे नाम से तुम्हें देगा। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे कि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। यूहन्ना 16 आयत 23-24। उन्होंने अपने विश्वास को अधिक से अधिक बढ़ाया, यह कहते हुए कि मसीह जो मरा वरन जी भी उठा और परमेश्वर की दहिनी ओर है और हमारे लिए विनती भी करता है। रोमियो 8 आयत 34। और पिंतेकुस्त के दिन उन्हें धीरज देने वाला पवित्र आत्मा मिला, जिसके विषय यीशु ने कहा था कि वह तुम में होगा। यीशु ने और यह भी कहा था, मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं न जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास न आएगा, पर यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा। यूहन्ना 14 आयत 17, 16 आयत 7। अब से आगे ख्रीष्ट पवित्र आत्मा के द्वारा अपने बालकों के हृदय में सर्वदा निवास करेगा। यीशु के साथ इन शिष्यों का संबंध पहले की अपेक्षा अब और भी प्रगाढ़ हो गया, क्योंकि अंतरस्थल में विराजने वाले यीशु के प्रकाश, प्रेम और शक्ति की किरणों उनके द्वारा प्रकाशित होती थीं, और देखने वाले लोगों ने अचम्मा किया, फिर उनको पहचाना कि ये यीशु के साथ रहे हैं। प्रेरितों के काम 4 आयत 13। अपने प्रथम शिष्यों के लिए जो कुछ भी यीशु ने किया, वही वे अपने आज के सभी पुत्रों के साथ करना चाहते हैं। अपनी अंतिम प्रार्थना में उन्होंने शिष्यों के उस छोटे झुंड से यही कहा था, मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता, पर उनके लिए भी जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे। यूहन्ना 17 और आयत 20। यीशु ने हमारे लिए भी प्रार्थना की और वही भिक्षा मांगी कि हम उनमें एक हों, ठीक जैसे कि वे पिता में एक हैं। यह कैसा अनुपम संबंध है। मुक्तिदाता ने अपने बारे यह कहा है, पुत्र आपसे कुछ नहीं कर सकता, पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है। यूहन्ना 5:16-14:10। यदि ख्रीष्ट हम में वास करेंगे तो वे हम में काम करेंगे, क्योंकि परमेश्वर ही है जो अपनी सुइच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों करने का प्रभाव डालता है। फिलिप्पियों 2:13। तब हम वैसे ही कर्म करेंगे जैसे उन्होंने किए, हम उनका सा भाव प्रदर्शित करेंगे और इसी प्रकार उन्हें श्रद्धा और शक्ति से अपने प्रेम अर्पित करते करते, उनमें निवास करते करते, हम सब बातों में उसमें जो सर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाएंगे। इफिसियों 4:15।